ये आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने यह बात पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है।
ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख लंबे समय से कायम है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है।
सिंधु जल संधि पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि भारत इस संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी कर्मचारी को भारत में अपनी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप गतिविधियां न करने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाए जाने का काम तेजी से हो रहा है। केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे उन्नत 3 नैनोमीटर वाले चिप्स डिजाइन करने की क्षमता रखता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने मणिपुर में 2023 में हुई जातीय हिंसा से जुड़े अपहरण और हत्या मामले में उग्रवादी संगठन कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स वार ग्रुप के एक प्रमुख कैडर को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने पिछले साल नवंबर में मणिपुर के जिरिवाम जिले में एक महिला की नृशंस हत्या और हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा घरों को लूटने और जलाने के मामले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। नेपाल अपना प्रमुख संवाद मंच सागरमाथा संवाद शुक्रवार से रविवार तक काठमांडू में आयोजित करेगा। इसमें 12 देशों के 145 उच्च स्तरीय शीर्ष प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में समकालीन मुद्दों पर वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चर्चा होगी। 78वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में आकर्षक रेड कार्पेट और रंगारंग समारोह के साथ आरंभ हो गया है। 12 दिनों के इस महोत्सव में विश्व सिनेमा की शानदार फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 12 दिनों के इस फिल्म महोत्सव में 22 फिल्में प्रतिष्ठित पाल्मे डी'ओर पुरस्कार पाने की स्पर्धा में हैं। सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की तिथि निर्धारित की है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक बयान में कहा कि राजपत्र अधिसूचना द्वारा इसे अधिसूचित कर दिया गया है। पहले धनतेरस पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत, उन्नति हुज्जा, मालविका बंसोड़ और महिला डबल्स जोड़ी गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के मुख्य ड्रॉ में अपना अभियान आरंभ करेंगे। उधर सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में मेजबान भारत ने कल नेपाल पर 4-0 से जीत दर्ज कर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उपमहालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।